जज्ञे सज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पाद तीर्थाश्रव श्रवण मंगल नाम धेया आपन्न लोक ब्रिजिनोपशमो दयाद्य ब्रिजिनोपशमो दयाद्य शम्नः कृधीश भगवन् असिदीननाथ शम्नः कृधीश भगवन् असिदीननाथ मरे बलि मदभूत वाम पद नखनीर जनित जन पावन क्षलय शिविक्रम रे बलि केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
केशव धृत
केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे माता अदिति इस श्लोक में भगवान का गुण गा रही हैं। यदि यह प्रश्न किया जाए कि किसके अनुरोध से किसकी प्रार्थना से भगवान वामन देव के रूप में अवतार लिए तो उसका सीधा उत्तर है अदिति की प्रार्थना से। एक व्यक्ति के प्रयास से व्रत करने से भगवान अवतार लिए अपने धाम से इस प्राकृत जगत में आए। कथा तो सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसे अमृत निकला तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके अपने भक्त देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर अमृत नहीं पा सके। इस बात से असुरों को बड़ा क्रोध हुआ और उसी स्पॉट पर जहां फिस्ट चला था अमृत का समुद्र के किनारे वहीं पर वे लोग युद्ध की चुनौती दे दी। उधर मोहिनी तो अदृश्य हो गई, पता नहीं वो घड़ा कहां फेंक दिया है पिला करके अमृत, और देवताओं में और जादुओं में देवताओं में और दानवों में घोर युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध। उसमें भगवान भी प्रकट हुए, असुरों को उन्होंने मारा। अंत में भगवान इंद्र ने बलि महाराज को मार दिया, वज्र से बलि महाराज मर गए और कई असुर मारे गए, कई घायल हुए। लेकिन उसमें से बहुत से असुर जिनके अंग कटे नहीं थे, मर गए थे लेकिन अंग लगे हुए थे शरीर से, उनको और बलि महाराज को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिए। उनको टांग करके किसी प्लेन से ले गए होंगे वो जहां रहते थे, शुक्राचार्य, तो उन्होंने जीवित कर दिया, मृत संजीवनी विद्या जानते हैं। उसके बाद बलि महाराज हिम्मत नहीं हारे और वे यज्ञ करने चालू किए, विश्वजीत यज्ञ। उन्होंने खूब सेवा किया शुक्राचार्य, जिस गुरु ने इस तरह पुनर्जीवन दिया, मरे हुए को जिला दिया, तो खूब मन लगा करके और धन लगा करके, प्राण लगा करके सेवा की। सर्वात्मना शब्द है, महात्मा अर्थ निवेदन है, अर्थ निवेदन से सेवा किए शुक्राचार्य, क्योंकि बिना अर्थ के जो सेवा होती है वो शुष्क होती है। यदि शिष्य के पास अर्थ हो और अर्थ लगा करके सेवा न करे भगवान की या गुरु की, तो वो सुखी सेवा है या शुष्क सेवा उसको कहते हैं। यदि धन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बलि महाराज ने बहुत अर्थ लगाकर सेवा किया, शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा, बेटा वर मांगो, क्या चाहते हो? तो बलि महाराज ने कहा कि मैं विश्व विजय करना चाहता हूं, स्वर्ग को जीतना चाहता हूं। जिन देवताओं से इस तरह बुरी तरह से हारे थे उनको भी परास्त करके स्वर्ग लेना चाहते थे। तो प्राण जीवन प्राण दान दिया था गुरु ने, इसलिए गुरु के प्रति ये बहुत कृतज्ञ थे। और जब इन्होंने सेवा किया शुक्राचार्य जी की, अपने गुरु की, तो वे बहुत शिष्य के प्रति वत्सल हुए, स्नेह के, ठीक है। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया, उसी से रथ निकला, घोड़े निकले, धनुष आदि निकला, और प्रहलाद महाराज ने माला पहनाया बलि को। बलि महाराज स्वर्ग में सेना लेकर चले गए, ये कथा वहां हो गई है। तो देवता अपने गुरु से परामर्श किए और उनके गुरु ने कहा कि इस समय बलि से युद्ध करना ठीक नहीं है, तुम लोग छोड़ दो स्वर्ग, जाओ अब, हो गया सुख स्वर्ग। बलि के सामने तुम लोग वैसे ही नहीं ठहर सकते हो जैसे कोई भी प्राणी मृत्यु के सामने नहीं ठहर सकता। आज तो कोई मृत्यु से युद्ध करके मृत्यु को हराया है कि मृत्यु नहीं सबको खत्म करती है ना? कितने लोग लड़े मृत्यु से, लड़ाई कई तरह की होती है, जड़ी बूटी खाकर, प्राणायाम करके या मंत्र से, वरदान पा करके, जैसे हिरण्यकश्यपु, वो मृत्यु से एक प्रकार से बहुत लड़ा लेकिन अंत में मृत्यु ने पटक दिया, खत्म कर दिया। तो जैसे मृत्यु के सामने कोई भी प्राणी आज तक नहीं टिक सका है, न टिक सकता है, उसी तरह बलि के सामने तुम लोग टिक नहीं पाओगे। हाँ, यदि मरने की इच्छा हो तब ठीक है, युद्ध करो। तब देवता लोग गुरु के परामर्श से स्वर्ग छोड़ दिए। स्वर्ग में इस तरह की विपत्ति आती है, पृथ्वी की तो बात ही क्या है, यहां तो कोई ठिकाना ही नहीं है कब क्या हो जाएगा। सचमुच कोई ठीक नहीं, किस दिन कोई आकर के घर से निकाल कर रोड पर कर देगा, कोई ठीक नहीं। देवता सब स्वर्ग छोड़ दिए। बलि महाराज जब स्वर्ग जीत लिए तो उनके गुरु ने कहा कि इंद्र पद पर रहने के लिए भगवान ने नियम बनाया है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वही टिक सकता है। तो तुम तो इंद्र पद ले लिए लेकिन भगवान के निगाह में तुम क्वालिफाइड बनो, यज्ञ कर लो 100 अश्वमेध, नहीं तो तुमको हटा दिया जाएगा। जैसे यहां देखा जाता है कोई खास नौकरी होती है तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन अर्जन करना पड़ता है बाद में भी। तो बलि महाराज यज्ञ प्रारंभ किए, बुरी तरह से पराजित हुए थे पहले, इसीलिए अब इनके मन में आ गया कि भोगों में नहीं रहना है, भगवान का भजन करना है, यज्ञ करना है, दान करना है, तप करना है। तो असुर होकर के ये लोग सब यज्ञ कर रहे थे और देवताओं को विजय मिली थी, तो वे लोग खून करके भोगों में पड़ गए। अब सोचे कि इतने बुरी तरह से असुर मारे गए हैं तो क्या हमारे विरुद्ध फिर थोड़े खड़ा हो जाएंगे। अब लोग सोच रहे थे कि इनकी कभी हिम्मत ही नहीं होगी करोड़ों वर्ष तक कि हमारी याद भी करें। और उधर तो असुर सब बलि महाराज के नेतृत्व में तप करने लगे, यज्ञ करने लगे, दान करने लगे, सारे ब्राह्मण उनके अनुकूल हो गए। इतना सेवा किया बलि महाराज ने, सब ब्राह्मण अनुकूल हो गए, खासकर भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य प्रधान। तो इससे बलि महाराज का तेज बढ़ता गया और स्वर्ग जीत ही लिए थे जैसा आपने सुना। और स्वर्ग जीतने के बाद भी वे भोगों में नहीं पड़े, स्वर्ग का वर्णन है, लेकिन बलि महाराज स्वर्ग में यज्ञ कर रहे थे। ये सब अश्वमेध यज्ञ जो हुआ वो स्वर्ग में हो रहा था। प्रायः जो इंद्र बनता है उस पृथ्वी पर यज्ञ करता है और वहां जाकर के भोगों में फंस जाता, लेकिन उस भोग प्रधान देश में स्वर्ग में भी बलि महाराज भजन कर रहे थे। और अश्वमेध यज्ञ का अर्थ विष्णु की आराधना, विष्णु की आराधना आराधना कर रहे थे। ब्राह्मण अनुकूल थे, बहुत सुख शांति थी। फिर हो गई, उसके पुत्र स्वर्ग से हटा दिए गए और यह भी पता नहीं चला कि पुत्र कहां भाग गए। ये भेष बदल करके स्वर्ग छोड़कर इधर उधर गुजारा करने लगे। दुख के दिन आ गए देवताओं का। एक दिन सारे विश्व के वे सम्राट थे, राजा थे, अब कहीं के नहीं रह गए। तो एक दिन की बात है, एक ग्रंथ में लिखा गया है कि भगवान इंद्र अपने भाई वरुण देव और लोगों के साथ विश्वकर्मा जी के साथ आकर के माता अदिति के चरण में रोने लगे। इतना बड़ा देवता लेकिन इस संकट के समय मां का सहारा लिया। जब लड़के पर कोई विपत्ति पड़ती है तो मां से कहता है। ये प्रश्न होता है कि पिता से भी कह सकते थे? पिता से नहीं कह सकते थे, क्योंकि पिताजी का सबसे कॉमन संबंध था। इनकी और भी मां थी जिसे दीति, तो दीति की परंपरा में जो दैत्य हैं वे लोग राजा बने हुए थे। तो कश्यप जी के लिए कोई अंतर नहीं था, बलि राजा बने चाहे इंद्र बने। बलि में और इंद्र में उनके लिए दाएं बाएं आंख जैसा संबंध, दोनों एक समान। तो उनसे क्या रोते इंद्र? बाप न्यूट्रल था, लेकिन मां तो कृपा कर सकती थी। इंद्र भगवान का वर्णन है, वो रोने लगे फुट फुट करके मां के चरणों में कि मां तुम ही कुछ करो। रो रहे थे तो मां का हृदय पिघल गया। वैसे ही स्नेहमयी होती है। उसने कहा कि बेटा रो मत, पुत्र चुपचाप रहो, मैं उपाय करूंगी। तो उपाय क्या करे, किसी स्त्री के द्वारा उपाय क्या होगा? उसका सबसे बड़ा उपाय उसका पति होता है। तो पति समाधि में थे, समाधि के बाद कश्यप जी आए आश्रम पर, देखा सब श्रीहीन है, उदास हो गया है आश्रम। वो बहुत दुखनी थे, जब हृदय में दुख रहता है तो लगता है कि दीवार भी रो रही है ना, घर भी रो रहा है, जब मन में ही खुशी नहीं है। तो पूछने लगे, बड़े चिंतित हुए वे भी कश्यप जी की, क्या बात है, तुमने अतिथियों का स्वागत नहीं किया क्या, या तुमने हवन नहीं किया समय पर, तुमने भगवान की भक्ति नहीं की, क्यों खिन्न हो? ये स्वाभाविक, एक स्नेहवान पति अपनी पत्नी से पूछता है, घर में किसी चीज की कमी तो नहीं हो गई, खाने की, पैसे की, या अपने कर्तव्य पालन में तुमको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कई तरह से प्रश्न कर रहे थे। अंत में उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से है ना? यह प्रश्न करने में तौ पुत्र करें, तुम्हारे पुत्र, ये नहीं कह सकते थे मेरे पुत्र। ऐसा भी पूछ सकते थे कि मेरे पुत्र सब कुशल से हैं ना, तो उसका अर्थ होता कि मेरे द्वारा तुम्हारे गर्भ से जन्मे हुए, उसका अर्थ हो जाता। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं पूछा, बड़े कुशल थे, कहे तुम्हारे सब पुत्र कुशल से हैं ना, इसका अर्थ है कि तुम्हारे गर्भ से जन्मे हुए पुत्रों के विषय में पूछ रहा हूं मैं, अन्य पुत्रों के विषय में नहीं पूछ रहा हूं, मेरे बहुत से पुत्र हैं। और उनको पता नहीं था कि स्वर्ग पर बलि महाराज का शासन हो गया, वो तो भगवान के भजन में रहते थे। तो जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से हैं ना, तो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, ये मैं जानती हूं कि जितने भी जीव हैं इस संसार में सब आपकी ही संतान है, इसलिए सब पर आपकी समान दृष्टि है, किंतु परंतु फिर भी आप भगवान के भक्त हैं और भगवान भी अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। जो भगवान करते हैं वही आपको करना चाहिए। आप निष्पक्ष भाव से देख लीजिए कि आपकी इतनी पत्नियां हैं, लेकिन उसमें से किसने आपकी सेवा खूब अच्छे मन से किया है, आप देख लीजिए। मैं आपकी दासी हूं, मैंने आपकी सेवा किया है, मेरी यही इच्छा है कि हमारे पुत्र पुनः स्वर्ग के राजा हो जाए। इतना कह करके चरण पकड़ ली, कश्यप जी तो हंसने लगे, कहें वो इतना अज्ञान, हमारे पुत्र, अरे आखिर इस समय स्वर्ग पर के जो राजा है वो भी किसी के पुत्र ही है ना, वो बिना जन्मे हुए आकाश से टपक गए हैं। यही माया है संसार में, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र राजा होना चाहिए। और राजा होने में कितना बड़ा युद्ध होता है, वो इसके लिए तैयार थी कि आप ऐसा वर दीजिए कि हमारे शत्रु मारे जाएं, उनकी स्त्रियां रोवें, हमारे पुत्र राजा बने। कश्यप जी कहते हैं देखो ये देह का संबंध कितनी बड़ी माया है, कौन किसका पति है कौन किसका पुत्र है, लेकिन इस तरह से मान्यता है। ज्ञान दे रहे थे लेकिन अदिति को ज्ञान से क्या मतलब था, जैसे जैसे प्रवचन कर रहे थे ज्ञान पर वैसे वैसे रूना और ऊंचा कर रही थी। स्त्रियों को ज्ञान जल्दी नहीं होता है, वो भक्ति के योग्य हैं। वो रो रहे थे तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी यही कामना है तो तुम एक व्रत करो। मैंने एक बार पूछा था अपने पितामह ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने एक व्रत बताया था सुख शांति के लिए, तुम व्रत करो, भगवान का व्रत है वैष्णव व्रत जिसे पयोव्रत कहते हैं, 12 दिन का व्रत है, अवश्य भगवान तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। उसने कहा ठीक है बताइए, उन्होंने बताया, इस पयोव्रत का वर्णन मैं वहां पर जुहू में बहुत विस्तार से किया था। दीति बहुत तत्पर होकर के पयोव्रत की, बहुत प्रेम से और यत्न से नियम पालन पूर्वक निद्रा छोड़कर भोजन छोड़कर के उसने भगवान का भजन किया, भगवान उसके सामने प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो वहीं पर अदिति प्रार्थना कर रही है भगवान से, तो ये कई विशेषण भगवान के लिए दे रही है, मैं इसी की थोड़ी व्याख्या करना चाहता हूं। जज्ञे सजज्ञ पुरुषा चित तीर्थ पाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक ब्रिजिनो पशमो दयाद्य शमनः कृधीश भगवन् सिदीननाथ। हे भगवान नह शम कृधि, हे भगवान आप हमारा मंगल कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, यह मुख्य वाक्य, आप हमारा कल्याण कीजिए हित कीजिए। और सबसे पहला विशेषण दे रही है जज्ञेश, हे यज्ञ फल दाता, मैंने यज्ञ किया पयोव्रत किया और आप उस यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं फल के रूप में, तो आप यज्ञ फल दाता हैं। इस संसार में व्यक्ति जो भी तपस्या करता है यज्ञ करता है दान करता है तो उन शुभ कर्मों के फल दाता भगवान है। इस जगत में तो देख सकते हैं कि आप मान लीजिए उपवास किए व्रत किए तो न सरकार उसको फल देती है न परिवार देता है ना, लगता है कि एकादशी भूख कर एक सजा भोगे हैं, कोई सामने फल नहीं आता है। लेकिन याद रखिए कि ये भगवान के यहां ये रिकॉर्ड होता है, वो फल देंगे, क्योंकि जज्ञेश यज्ञ का फल वो देते हैं। यहां जो भगवान के लिए हम कष्ट सहेंगे, मंगल आरती में आएंगे या और भी पूजन करेंगे भगवान का, उपवास करेंगे दान करेंगे, तो इसका फल देने की जिम्मेवारी केवल भगवान पर ही है, वही यज्ञेश है यज्ञपति। और माता अदिति के तो सामने फल देने के लिए आ गए हैं, 12 दिन के यज्ञ से ही वे प्रसन्न। कभी कभी भक्तों के मन में यह बात उठती है कि हम इतना जप कर रहे हैं चाहे ये कर रहे हैं, भगवान जानते हैं कि नहीं। कभी कभी संशय उठता है। अरे कभी कभी किसी के मन में यह भी संशय उठ सकता है कि कृष्ण वास्तव में है कि नहीं है, कौन जानता है, देखे नहीं मिले नहीं, अनेक असंभावनाएं और संशय उठते रहते हैं मन में। अच्छा यह अभी विश्वास हो जाए कि हाँ जगन्नाथ जी हैं, भगवान हैं, लेकिन हमारे इस कर्म का वो फल देंगे नहीं देंगे, इसको अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे, भाई हम भजन कर रहे हैं तो इसको देखने वाला कोई चाहिए ना कि इसने भजन किया उसका फल देना है। भजन का फल मतलब भगवत प्रेम, भगवान का दर्शन। तो ये विश्वास रखिए कि और कोई आपके भजन को यज्ञ को जाने या न जाने, लेकिन अंतर्यामी भगवान सब जानते, एक एक मिनट का जानते, एक एक सेकेंड का। निराश नहीं होना चाहिए, हम शुभ कर्म कर रहे हैं, यज्ञ तपस्या आदि कर रहे हैं तो भगवान फल देंगे उसका, वही फलदाता, दूसरे को नियुक्त किए ही नहीं है फल देने के लिए। और जो दुनिया का वैभव है, धन है, उसको देने के लिए भगवान बहुत लोगों को नियुक्त किए हैं, जैसे भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, या और भी देवता गणपति जी हैं, इन लोगों को नियुक्त किए हैं, तुम लोग बांटा करो इस तरह से। लेकिन भगवान की भक्ति का फल देने के लिए ये लोग नहीं हैं। कुछ कर्मों का फल देने के लिए लोग नियुक्त किए हैं, बहुत साधारण, लेकिन भगवान की भक्ति जो अमोघ होती है उसका फल देने के लिए भगवान स्वयं जिम्मेदार है, और वो कभी भूल नहीं सकते, कम फल नहीं देंगे। एक बार नामोच्चारण का फल क्या दे सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार की घटना है, एक बार एक व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले रहा था, हार गए लोग बुलवाते बुलवाते, एक बार भी नहीं था, बोला ही नहीं। एक बार एक महात्मा आए उसके घर पर साधु, बड़े बलवान थे अट्ठागठ, वो कहे कि मैं बुलवा दूंगा इसको मैं, और वो अकस्मात एकांत में रात में उसके छाती पर चढ़ गए और गला दबाने लगे और कहने लगे कि बोल विष्णु बोल, नहीं तो तुमको मैं जान से मार दूंगा। और वो तो घबरा गया कि अब नहीं बोलूंगा तो ये सचमुच मार देगा, तो एक बार विष्णु कह दिया बस एक बार, और वही बाद में अफसोस करने लगा कि कैसे हमारे मुख से निकल गया विष्णु, तो बुलवा दिए इस तरह से। अब तो बड़ा अफसोस में रहता था कि मेरे मुख से नाम निकल गया फालतू। उसकी मृत्यु हो गई तो जमराज जी के यहां गया तो वो लोग रिकॉर्ड देखने लगे तो केवल पाप ही पाप था, पुण्य तो कुछ था नहीं। एक बार विष्णु नाम उच्चारण का कहीं पर रिकॉर्ड लिखा हुआ था, एक बार बोला है विष्णु या हरे कृष्ण जो, तो जमराज जी ने पूछा कि पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का, उसने कहा कि क्या पुण्य है बताओ तब बताऊंगा। तो वो कहे कि एक बार भगवान का नाम बोले हो, तो वही पूछता है इसका कितना फल हुआ। अब तो जमराज जी चकरा गए कि भाई एक बार भगवान के नाम के उच्चारण का फल कितना हो गए तो हम भी नहीं जानते। चकरा गए जमराज जी, तो कहे कि अच्छा हम पता लगा लेते हैं, हम जाकर के पूछते हैं ब्रह्मा जी से, क्योंकि किसी भी कर्म का फल वही लिखते हैं तो वो जानते हो। तो जमराज जी गए और वो पापी व्यक्ति भी गया। जमराज जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि मैं बहुत सीरियस काम से आपके पास आया हूं, एक पापी को दंड देना है, लेकिन एक बार उसने भगवान का नाम बोला है तो एक बार नाम उच्चारण का कितना फल होता है। ब्रह्मा जी कहे कि अरे ये तो हम भी नहीं जानते। वह कहा कि भगवान शिव बारंबार भगवान का नाम रटते रहते हैं रात दिन, वो जानते होंगे। तो चलिए चलिए चलिए, तब तीनों साथ में हो गए, ब्रह्मा जी भी गए। और ब्रह्मा जी जाकर के भगवान शिव के पास पूछे, अरे भाई आप तो सबसे बड़े नाम रसिक हैं, सबसे बड़े वैष्णव हैं, एक बार विष्णु नामोच्चारण की क्या महिमा है, इसका क्या फल है बताइए, बहुत सीरियस मैटर है, हमको दंड देना है। भगवान शिव ने कहा कि मैं नहीं कह सकता, एक बार नामोच्चारण का कितना फल है मैं नहीं जानता, जिनका ये नाम है उन्हीं विष्णु भगवान से ही पूछा जाए। सब लोग अब चार हो गए, लोग जाकर के पूछे, भगवान को प्रणाम किए, भगवान ने स्वागत किया सबका, पूछ कैसे आए, बोला कि हम लोग आपके नाम उच्चारण की महिमा सुनने के लिए आए हैं कि इसका क्या फल होता है, इसने एक बार नाम लिया है। तो भगवान ने कहा कि अब आप लोग जाइए, ये वैकुंठ में रहेगा, यही फल है। भगवान ने कहा कि इसका फल मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन अब वैकुंठ में ही रहेगा कम से कम, नाम जब का ये फल है, नाम उच्चारण का एक बार का, मैं भी नहीं कह सकता, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाए। भगवान वास्तव में अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते, इतना ज्यादा महिमा है नामोच्चारण की। तो एक बार नामोच्चारण का क्या फल होगा, इसको तो यज्ञ से ही जानते हैं। तो नाम उच्चारण का फल उन्होंने वैकुंठ दिया, और वो जमराज जी पूछे कि और हमारा रजिस्टर क्या होगा जिसमें इसके पाप को लिखा है। भगवान के जाओ जाओ जला दो, खत्म करो। इस तरह से तो भगवान जानते हैं कि उनके भक्ति का फल क्या होगा, दूसरा कोई नहीं जानता है। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, भगवान यज्ञ फलदाता है और यज्ञ पुरुष है। यह यज्ञ पुरुष का अर्थ है यज्ञों के द्वारा आराध्य, यज्ञ के फलदाता भी है और यज्ञों के द्वारा वही आराध्य हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए ही यज्ञ किया जाता है। आपको संतुष्ट करने के लिए यज्ञ किया जाता है, शुभ कर्म किया जाता है, ये दूसरा अर्थ है। तीसरा है अच्युत, आपका जो भजन करते हैं, आपकी जो शरण लेते हैं, वो कभी भी महाविपद में भी च्युत नहीं होते हैं, और सब जीव जन्म मरण में पड़ जाते हैं लेकिन आपके भक्त नहीं, जिनके प्रभाव से उनके भक्त कभी च्युत नहीं होते हैं, कभी संसार में नहीं गिरते हैं, उनको अच्युत कहते हैं। अच्युत इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान स्वयं नहीं गिरते, नहीं, ये अर्थ नहीं है, उनके प्रभाव से भक्तों का भी पतन नहीं होता, इसलिए वो अच्युत कहे जाते हैं। तीर्थपाद चौथा विशेषण माता अदिति दे रही हैं कि आपके पाद में, आपके चरण में ही सारे तीर्थ बसे हुए। जो व्यक्ति भगवान के चरणों की शरण लेता है वो परम पावन हो जाता है, क्योंकि सारे तीर्थों का उद्गम भगवान का चरण, श्री गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकली और गंगा जी समस्त तीर्थों में शिरोमणि। इसीलिए श्रीमद् भागवत में लिखा गया, जतपाद संश्रया सुत मुनय प्रशमायना सद्य पुनंत उपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापनु सेवया। हे सुत गोस्वामी, भगवान कृष्ण के चरण कमल के शरण में रहने वाले भक्त जन दर्शन मात्र से जल्दी पवित्र कर देते, सद्य पुनंत उपस्पृष्टा, हल्का स्पर्श किया जाए, आंखों से भी देखा जाए भगवान के भक्त को, या उनका चरण छुआ जाए तो छूने मात्र से या दर्शन मात्र से पवित्र करते, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गुण, क्योंकि उनके हृदय में भगवान रहते हैं, उनकी शरण का विष्णु की वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसके सारे पाप तब धुल जाते हैं। यह विशेषण भगवान के लिए रिजर्व है, इतना पवित्र जल है गंगा जी कि भगवान शिव उसे अपने जटा में धारण करते हैं, ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण करते हैं और प्रतिदिन डालते रहते हैं शिव, और शिव जी तो अखंड धारा धारण ही किए, गंगाधर हो गए, तो भगवान तीर्थपाद हैं। तीर्थ श्रव और तीर्थम श्रवो जस, श्रव का अर्थ कीर्ति, जस भगवान की कीर्ति, उनका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन या श्रवण, यही तार देता है, कर्मबंधन को ध्वस्त कर देता है। कर्मबंधन ही नहीं, कर्म की समस्त वासनाओं को भी मूल से समाप्त कर देता है, सारी वासनाएं समाप्त कर देता है। एक प्रश्न यहां पर उठ सकता है इसके पहले कि भाई गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं, लेकिन ब्रह्मांड में इतने लोग फैले हुए हैं, सब गंगा जी के पास तो नहीं जा सकते, तो कैसे उद्धार होगा, कैसे तारेंगे? गंगा जी के पास कोई जाए तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, काम धंधा छूटेगा, जाएगा। जो लोग गंगा जी के तट पर हैं उनका तो बहुत बड़ा भाग्य है, कोई बात नहीं, लेकिन जो दूर हैं वे तो यहां पर माता आती कहती हैं कि ठीक है, उनके चरण से गंगा जी निकली हैं, लेकिन भगवान ने कीर्ति की गंगा ऐसी बहाई है कि कहीं जा सकती है, श्रीमद् भागवतम सारे संसार में घूम रहा है, भगवान के यश से भरा हुआ ग्रंथ, तो उसमें यदि कोई डुबकी मारेगा या एकाध छींटा भी डाल लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वह निश्चित पवित्र हो जाएगा। भगवान का कोई एक गुण गुनगुनाया, मन में आया, सुन लिया कान से, या जिह्वा, या भगवान का नाम सुना या जिह्वा से बोला, तो पुण्य श्रवण कीर्तन उसी शब्द की का पर्यायवाची, तीर्थ श्रव, भगवान का यश ही तीर्थ है। कोई किसी भी देश में रहे, कहीं रहे, अपने काम धंधा में रहे, घर में रहे, लेकिन भगवान का गुण गाएगा, नामोच्चारण करेगा तो उतर जाएगा, यह भगवान की कीर्ति की अपनी खास विशेषता है। पुण्य श्लोक कहते हैं भगवान को, बहुत सुंदर जस है, उत्तम श्लोक, तीर्थ श्रव। इस पर भी एक प्रश्न होता है, कहीं भगवान की कीर्ति तो पवित्र करती है, लेकिन कीर्ति कोई सुनाएगा तब न, चाहे हम पढ़ेंगे तब न, और पढ़ना जानते नहीं, या तो कोई सुनावे या हम बोले, तो ज्ञान है ही नहीं भगवान की कीर्ति कैसी है, जस कैसा है, तब कैसे उद्धार होगा। तो उसका उत्तर देते हुए माता आरती कहते हैं, श्रवण मंगल नाम ध्येय, नाम ध्येय का अर्थ नाम, भगवान का नाम ही सुनने से ही मंगल दे देता है, फिर बोलने पर तो कहना ही क्या। श्रवण मंगल नाम है, अथवा श्रवण कीर्तन या उपलक्षण, भगवान का नाम मंगल देता है। मंगल का क्या अर्थ है? मंगल का अर्थ है इस जीवन में सुख से रहेंगे और परलोक में तो सुख है, मंगल शब्द का ये अर्थ है। संस्कृत में एक मंगी धातु है, उसका अर्थ क्या है? मंगल गति, गति, गति के अर्थ में होता है। गति का दो अर्थ होता है, एक तो चलना, गति, जैसे रोड पर लिखा रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, चाल, चलना, और गति का अर्थ है ठहराव, डेस्टिनेशन भी होता है, जहां जाना है, दोनों अर्थ होता है। तो जीव यात्रा में है तो सुख से यात्रा हो जाएगी, इस जीवन में भी धन धान स्वास्थ्य आदि बना रहेगा भगवान का नाम लेने से, और परलोक में तो जैसा आप सुने वैकुंठ में एक नाम बोल करके चला गया थे, और उसको आराम से जमराज जी सवारी से ले गए थे वो गए थे खुद ही अपने प्लेन से, तो उसको ले गए थे वैकुंठ एक बार नाम उच्चारण का। तो नाम उच्चारण करने वाले जप करने वाले की शुभ गति निश्चित, एकदम उसमें कोई संशय नहीं। परलोक में भगवान का धाम मिलेगा और इस जीवन में भी सब ठीक रखेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है राम नाम के विषय में कि रोटी लुगा नीके राखे आगे हूं कि वेद भाखे, रोटी लुगा नीके राखे, ये विनय पत्रिका में कवितावली में। रोटी लुगा, रोटी का अर्थ भोजन और लुगा मैंने कपड़ा। भगवान का नाम लेने पर भोजन और कपड़ा तो ऐसे ही मिलता रहेगा और आगे वैकुंठ मिलेगा, इसको तो वेद कह ही रहा है। आगे हूं कि वेद भाग है। इस जीवन में वास्तव में भगवान का नाम लेने से भोजन और कपड़ा की कमी नहीं होती। और सब जगह लोग कर क्या रहे हैं, अरे कुछ कीर्तन कर देते हैं, गा देते हैं, इसी पर सब रोटी लुगा चल रहा है। भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, वो अपने आप लोग देते हैं। या भगवान कोई न कोई उपाय कर देते हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि जेकर खर्ची सवा मन के उपजे सवा शेर, ना जाने राम जी लगे हैं कौन फेर। जिसका खर्चा सावा मन का है, मन मन जानते हैं, पहले के लोग जानते हैं, लड़के नहीं हैं। जिसका खर्चा सावा मन का है और उपज खेत में घर में कितनी हुई सावा से, सावा मन का खर्चा है और उपज सावा से हो, लेकिन फिर भी राम जी कोई न कोई उपाय लगाकर पार कर दे, ना जाने राम जी लगे हैं कौन फेर। वास्तव में भगवान परम दयालु हैं, उनके नाम में बहुत शक्ति है। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम गुनगुनाता रहता है, इस जीवन में वो दुखी नहीं रहेगा, सब ठीक रहेगा और आगे तो भगवान के धाम में जाएगा। इसको श्रवण मंगल नाम ध्येय कहते, सुनने मात्र से भगवान का नाम मंगल करता है। यह कौन विशेषता है? एक दो तीन चार पांच छठी विशेषता भगवान की बता रहे, सातवीं बता रहे हैं आपन्न लोक ब्रिजनोप समुदय। आपका अवतार होता है अपने शरणागत के दुख का उपशमन करने के लिए। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण लेगा उसका वे दुख दूर कर देते हैं। भगवान इस प्राकृत जगत में आते हैं यही सिखाने के लिए कि हमारी शरण लो, देखो यह व्यक्ति हमारी शरण लिया तो सुखी हो गया, अदिति ने मेरी शरण लिया तो सुखी हो गई, उसने शरण लिया तो सुखी हो गया। भगवान यहां आकर के दिखाते हैं जिससे कि लोग शरण लें, भगवान का भक्त बने। तो ये सातवीं विशेषता है। और आद्य, आप आदि पुरुष हैं, सबका जन्म आपसे हुआ है, ब्रह्मा आदि का जन्म सबका आपसे हुआ है और ईश्वर आप सबके नियंता हैं और भगवान छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और दीननाथ आप दीनहीन से बहुत प्रेम करते हैं, मैं दीन हूं आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह भगवान के प्रकट होने पर माता अदिति ने भगवान का गुण गाया, तब भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र बनूंगा और उपाय करूंगा, आपके पुत्रों को राज्य दिलाऊंगा। उसके बाद भगवान गर्भ में आए और गर्भ से आज के दिन प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, लेकिन फिर वामन के रूप में हो गए, ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान हो गए और बलि महाराज के यज्ञ में गए, दान मांगे। ये प्रसंग चल रहा है हम लोगों के जुहू मंदिर में, भगवान पहुंच गए हैं बलि महाराज के यज्ञ में, बलि महाराज ने उनका स्वागत किया है और भगवान अपना संतोष व्यक्त कर रहे हैं। जब बलि महाराज तैयार हो गए दान देने के लिए तो शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं कि इतना मत दो, लेकिन आज बलि महाराज का उद्गार है वहां पर, अपने गुरुदेव से बातचीत करते हैं और भगवान को उन्होंने सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया, जो कुछ था सब दे दिया। आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य बलि महाराज हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम सर्वस्व दे देना, अपने को और अपनी वस्तुओं को। इस विषय में जुग जुग तक भक्त लोग सीखते रहेंगे बलि महाराज से, कैसे भगवान को समर्पण किया जाता है, दिया जाता है। इस तरह से दिया उन्होंने, रोकने के बाद भी, और ऐसे गुरु रोक रहे थे जिन्होंने इनको जिलाया था, स्वर्ग विजय कराया था, फिर भी दे दी। जुग जुग तक बलि महाराज का प्रकाश फैलता रहेगा, जब तक श्रीमद् भागवतम है तब तक भक्तों को एक प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो आज का दिन बड़ा मंगलमय है, बहुत ही दिव्य दिन है, जिस दिन भगवान आए, भगवान के रूप में नहीं आए। और समय में तो हथियार लेकर के आते हैं, चक्र आदि काटते रहते हैं पापियों को, लेकिन इस बार स्वयं ही दीनहीन बनकर भीख मांगने आए। यह अद्भुत विशेषता है भगवान, जाकर के हाथ पसारे एक असुर के पास, जाति से असुर कह रहा हूं बलि महाराज का। हमको तीन पग भूमि चाहिए राजन, दे दीजिए, हमको एक कुटिया उठाना है, कुटिया बांधना है, ये करना है। अब तक भगवान कभी भी इस तरह भिखमंगा बनकर नहीं आए थे अपने वैकुंठ से। अद्भुत लीला है कि वैकुंठ बिहारी लक्ष्मीपति भगवान यहां आकर के भीख मांग रहे, और अपने भक्त से उन्होंने स्पष्ट कह दिया था अदिति से कि इनके साथ युद्ध करना ठीक नहीं है, अतः मैं उपाय करूंगा। उपाय क्या? वही भिखमंगी करूंगा। यही उपाय की। ऐसा छोटा बेटा, छोटा पुत्र योग्य निकला कि अपने बड़े भाइयों के लिए आसानी से उनका राज भीख मांग कर ला दी। भगवान ऐसा हो, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि भगवान का सब काम विलक्षण होता है। भीख मांगने गए तो पूरा ब्रह्मांड भीख में ला दी। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कौन भीख मांगेगा, पूरा ब्रह्मांड भीख में ला दी। ये भगवान की विलक्षणता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहां पर आज कृष्ण का श्रृंगार वामन देव के रूप में हुआ है। केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे, यही वैष्णवता है वास्तव में। भगवान के जन्म के दिन भगवान का स्मरण करना, कीर्तन करना। हरे कृष्ण जय श्री प्रभु। उनकी श्रवण शक्ति ज्यादा थी और बोलने वाले मेघ के समान बोलते थे, वाणी बहुत ऊंची थी। जब बादल गरजता है तो माइक पर थोड़े गरजता है। इतनी ऊंची आवाज होती थी उनकी, नहीं उस तरह से वो सुन सकते थे। माइक में हम बोल रहे हैं तो पास वाले का कान फट रहा है, ये समान सुनाई पड़ रहा है सबको। वो सहज संभव था। कहते हैं ना, वो कोई वेद का वाक्य थोड़े कहते हैं ना लोक में लोग, लेकिन वेद का वाक्य नहीं है ना, शास्त्र का वाक्य नहीं है ना। गंगा गंगा कीर्तन तो कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा हो तो एक गंगा जी का एक प्रकार से तिरस्कार करते हैं ना, कि हमारा मन शुद्ध है, हमको गंगा की क्या जरूरत है, या हम हमारा विचार ठीक है तो हमारे घर के काठ के बर्तन में गंगा जी है, वही अर्थ हुआ ना। तो वो भी ठीक है, ऐसा कहना उचित है, मन चंगा, लेकिन चंगा मन का अर्थ है भगवान में लगा हुआ स्वस्थ मन है। जब मन भगवान के रूप गुण लीला को पकड़े, मन में भगवान की छवि आवे, याद आवे उनकी लीला, उनके नाम, तब ठीक है। ऐसे भक्त के लिए वास्तव में गंगा जी घर में है, श्रवण मंगल नाम ध्येय, भगवान का जहां कीर्तन होता है वहां सभी तीर्थ आ जाते हैं, भगवान की कथा होती है तो सभी तीर्थ आ जाते हैं, ये भाव है। यदि मन में भोग वासना नहीं है, विचार बहुत भगवान में लगा हुआ है, तो उस घर के कठौती में गंगा जी ठीक है। हाँ, तो उसे पूछिए चंगा कैसे हो गया। हाँ? कोशिश कौन कोशिश, हाँ तब मन चंगा हो रहा है। घर से चला, यहाँ आकर भगवान का दर्शन किया, भक्तों को देखा, तो मन में हुआ कि ओहो यही करना चाहिए, तो ये चंगा मन इसको कहते। तो भगवान का नाम बोलने लगे, जप करने लगे और गुण सुनने लगे, मन भगवान में लगा, तो वास्तव में गंगा जी कठौती में है, लेकिन भगवान में मन लगना चाहिए ना। चंगा कह देना एक सरल बात है, लेकिन मन को चंगा सही बनाना कठिन है। वो तो कुछ भी मन में सोच रहे हैं, दुर्विचार कूड़ा कचरा भरा हुआ है, और कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, तुम्हारा मन चंगा है ही नहीं। वो केवल गंगा चंगा बैठाने के लिए कविता करते हैं, तुकबंदी करते हैं। है ना? चंगा मन भगवान का नाम जपता रहेगा, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
जो भक्त जप करते हैं, समझना चाहिए उनके घर में कठौती में गंगा जी हैं, और कोई आवे उसमें स्नान करे, चाहे वो सत्संग करे भक्तों का, जो ठीक रहेगा, चाहे भागवत पढ़ रहा है, भगवान की घर में सेवा कर रहा है, वो ठीक है। और एक सुगमता बताई गई है कि भाई नहीं, भगवान की कीर्ति सुलभ है, तो नाम तो कहीं भी जप सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत सुगमता है, सरल है, सबसे बलवान साधन है। परंतु केवल इसे संतोष नहीं कर लेना चाहिए, भगवान के गुण में, लीला में, श्री विग्रह के दर्शन में, नाम में कोई भेद नहीं, तो प्रत्येक तरह से भगवान को पकड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई प्रेम करता है, तो कोई कहे कि हमको बस उनके नाम से मतलब, और वो आ जाए तो मन नहीं मतलब है, वो तो जब प्रेम होगा तो उनका कपड़ा वो व्यक्ति संभाल कर रखेगा, जूता संभाल कर रखेगा, उनका फोटो होगा तो संभाल कर रखेगा, वो खिलाएगा पिलाएगा। नहीं, घर पर आए और वो कहे कि नहीं हम तो नाम जप कर रहे हैं, अब खाइए चाहे मत खाइए। तो सुगमता की दृष्टि से और वास्तव में बलवत्ता की दृष्टि से भी कहा जा रहा है, परंतु वह अन्य चीजों का विरोधी नहीं है। आज के युग में लोग कह रहे थे हम नाम जप कर रहे हैं इसलिए हमको उसकी जरूरत नहीं, नहीं, नाम जप कर रहे हैं तब तो और जरूरत है आपको, क्योंकि भगवान से प्रेम बढ़ाना है ना, केवल मंगल ही नहीं करना है, प्रेम बढ़ाना है। तो प्रेम के लिए भगवान की गुणावली को पढ़ना सुनना ये भी आवश्यक है, भक्तों का साथ, कीर्तन, दर्शन और नामोच्चारण। नामोच्चारण ऐसा है कि सबके साथ हो सकता है, वो तो मैं अर्थ किया, वो एक कभी कभी शास्त्र का ऐसे अर्थ किया जाता है, भाई ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। जैसे भगवान गीता में कहते हैं 12वें अध्याय में कि जब भी इसमें तुम असमर्थ हो तो ये करो, इसमें असमर्थ हो तो ये करो, इसमें असमर्थ हो तो ये करो, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम ही करो, ये भगवान का विचार नहीं है। भगवान तो ये चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास का पहला ही करो। है ना, मई अब फर्स्ट क्लास का क्या है, मई ये वह मन आधत् स्व मई बुद्धि निवेश निवश शिष्य मई ये वह अत ऊर्धम न संश, ये फर्स्ट क्लास का है पहला। लेकिन इसमें कैसे अथ मन समाधातु न सकनो सी मई स्थिरम, कुछ ऐसे है, यदि मन को मुझ में नहीं कर सकते तब यह करो। तो फर्स्ट क्लास का यह है कि भगवान में मन लगाया जाए, बुद्धि लगाया जाए, और उसके अनुसार सारी इंद्रियां कीर्तन किया जाए, और भी जो कुछ भी है। और उसी तरह से भगवान का नाम कीर्तन है, सर्वोपरि है वास्तव में, लेकिन केवल उसी से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जी हाँ, अर्चन करते थे, कीर्तन करते थे, वो तो जीवन के अंतिम 7 दिन सुने, उसके पहले तो और सुने थे, कीर्तन किए थे, कोई भक्ति बाकी नहीं थी। भक्ति थी तब तो राज छोड़कर गंगा जी के तट पर चले गए ना, बिना भक्ति के कैसे जाते। अब कोई कहे कि वो कोई व्यक्ति कारखाना खोल करके पैसा कमा लिया, बहुत धनी हो गया, तो पहले से ही धनी था तब ना कारखाना खोला। ऐसे ही कारखाना फ्री में खोल करके धन कमा लिए, पहले से वो परम भागवत थे, महाभागवत, इसलिए श्रवण में उनकी रुचि हुई। श्रवण सुने और मन भगवान में अविष्ट हो गया, चले गए भगवान के पास। लेकिन उसके पहले सारी भक्ति करते थे, और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो क्या वो सुनते नहीं थे? भीष्म पितामह के पास जब प्रवचन चल रहा था तो आकर वहां सुन रहे थे। ये भागवत में लिखा हुआ है, मने ब्रह्मराता दैव मला, इनको ब्रह्मरात कर सुखदेव गोस्वामी गए थे, सुन रहे थे वहां। यही परीक्षित को सुनाएंगे बाद में, लेकिन भीष्म पितामह बोल रहे थे तो सुखदेव जी सुन रहे थे। भगवान सुन रहे थे, सुखदेव जी कौन है? भगवान सुन रहे थे वहां पर भीष्म पितामह के मुख से। भगवान वहां एक मानव लीला में आविष्ट मन से सुन रहे थे, भाई सत्संग करना चाहिए, इतने बड़े ज्ञानी अब चले जाएंगे संसार से, इनका संग करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो महाराज जो भीष्म प्रश्न कर रहे थे भगवान सुन रहे थे, द्रौपदी जी सुन रही थी, सब भाई थे, ऋषि मुनि सुखदेव जी थे। कभी सुनेंगे, कभी बोलेंगे, कभी स्मरण करेंगे, कभी भगवान की पूजा करेंगे, कभी कीर्तन करेंगे, जो भी भक्ति की विधा हो करना चाहिए समय अनुसार। भगवान की पूजा का समय आवे और कहा जाए कि आप भगवान की पूजा कीजिए, तो भक्त कहे कि नहीं, नाम जब सबसे श्रेष्ठ है, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, नाम जब श्रेष्ठ है, लेकिन उस समय पूजा ही श्रेष्ठ है। जय हरे कृष्ण।